जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं रुद्र भानु प्रताप सिंह, बीए प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष सामाजिक विज्ञान संकाय से आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं देवताओं का स्वरूप। तो आइए देखते हैं देवताओं का स्वरूप। वैदिक देवताओं को विकास प्रकृति के धरातल पर बाह्य और अंतस दो स्वरूपों में हुआ। प्रारंभ में आर्यों का संपर्क जगत से हुआ तथा बाह्य प्राकृतिक शक्तियों ने उन्हें अचंभित और प्रभावित किया। आकाश, पृथ्वी, प्रकाश, अंधकार, वृष्टि और अनावृष्टि आदि के प्रभाव से आर्य आश्चर्यचकित थे। अतः आर्यों ने उन प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनकी अद्भुत शक्तियां आर्यों के ज्ञान और सोच से परे थी। परिणाम स्वरूप द्यावा पृथ्वी, इंद्र आप, उषा सूर्य, वरुण आदि शक्तियाँ देवतुल्य हो गईं। आर्यों ने उन्हें मानवीय आधार पर सहज और मनोवेचित गुणों के अंतर्गत गृहित कर प्रसन्नता अप्रसन्नता में मंडित किया तथा उसे आशीष प्राप्त करने के लिए उसके अस्तवन पूजन की नियोजन की। आर्यों की यह कल्पना थी कि देवताओं की कुदृष्टि और उनके कोप से बचने के लिए उनकी निरंतर स्तुति और ध्यान आवश्यक था। इसलिए देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए आर्य निरंतर पूजन अर्चन करने में लगे रहते थे। ऐसी प्राकृतिक बाह्य शक्तियों के साथ साथ अंतः शक्तियां भी मनुष्यों को प्रभावित करती थीं तथा अपनी प्रेरणा से उसे संचालित करती थी। बुद्धि ऐसी ही अंतः शक्ति थी जो मनुष्य को अच्छा बुरा, उचित अनुचित और गुण अवगुण का ज्ञान कराती थी तथा उसे सतपथ का दिग्दर्शन कराती थी। इसलिए वह सरस्वती के रूप में पूजित और आदृत हुई। श्रद्धा भी अंतस की एक ऐसी शक्ति थी जिसके कारण मनुष्य दूसरों के प्रति नत तथा देवताओं और बड़ों के प्रति विनम्र होता था। इस प्रकार वैदिक देवताओं का स्वरूप बाह्य और अंतस दोनों जगत से संबंधित है। मनुष्य तथा समय समय पर दोनों जगत को मनुष्य को समय समय पर दोनों जगतों में प्रभावित करता था। देवताओं की कल्पना का आधार मानवीकरण। वैदिक साहित्य से विदित होता है कि आर्यों ने देवताओं को मानवीय आधार पर कल्पित किया तथा मानव के रूप में उन्हें स्वीकार करके उन्हें मानवीकरण की संयोजना की। यही नहीं, प्रत्येक देवता की अपनी देवी पत्नी की भी उद्भावना मानवीकरण के आधार पर की गई। उन्होंने देवताओं में उन गुणों और आचारों का दिग्दर्शन किया जो मनुष्यों में दृष्टिगत होते थे। वे गुण आदर्श और सदाचार संपन्न थे। नैतिकता के वे प्रतिमूर्ति माने गए थे। साधारण मानव और देवता में अंतर बस इतना था कि मानव में मानवोचित दुर्बलताएं और दुष्प्रवृत्तियां थीं तथा देवताओं में इन सब अवगुणों के विपरीत अपार शक्ति, सहायता करने की अविकल इच्छा, नैतिकता और सदा सहायता की भावना थी। वे अमर और सर्वव्यापी थे, अतः वे मानव होकर भी अति मानव थे। वे अपनी उदात और स्नेहसिक्त प्रेरणा से मानव को बल प्रदान करते थे। रिक्त उनका नियामक था जिसके कारण दुष्चरित और दुराचारी को वरदान नहीं दे सकते थे, अतः रिक्त का उल्लंघन करना उनके लिए असंभव था। मनुष्य प्रायः देवता की कृपा का अभिलाषी रहा करता था। उपासक के रूप में वह अपने उपास्य देवता की आराधना करता था जो अति मानव के रूप में समाज में प्रतिष्ठित था। अतः मानव की देवताओं के प्रति स्वाभाविक और सहज श्रद्धा थी। इसका प्रधान कारण देवताओं का मानवीकरण था जिसने उपासक और उपास्य के बीच की कड़ी को स्वाभाविक रूप से स्थापित किया था। इसके साथ ही देवताओं की भी अपने उपासकों के प्रति और कृपायुक्त भावना थी जिसके वशीभूत होकर वे उपासकों की मनोकामना पूर्ण करने का प्रयास करते थे। कालांतर में आकर वैदिक देवताओं और देवियों ने मानवीय दुर्बलताओं का दिग्दर्शन किया तथा यह भी माना गया कि वे भी मानव की तरह कार्य कर सकते हैं। देवताओं की श्रेष्ठता। वैदिक साहित्य के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि देवताओं की संख्या बढ़ने पर उनकी श्रेष्ठता की बात भी उठने लगी। प्रायः यह सोचा जाने लगा कि कौन देवता किससे श्रेष्ठ है तथा सबसे पहले जन्म लेने वाले को किसने देखा है, वायु का उद्गम कहाँ से है तथा वह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। इसके साथ ही यह प्रश्न भी उठा कि किस देवता को हावी देनी चाहिए। अतः इन पृच्छाओं के साथ श्रेष्ठ देवता के विषय में सोचा विचारा गया। आर्यों ने धीरे धीरे देवताओं को कई कोटियों में रखा, जिससे उनकी संख्या कुछ कम हुई। पृथ्वी और आकाश को द्यावा पृथ्वी के अंतर्गत एक ही कोटि में गर्भित किया गया। इस प्रकार मित्र वरुण और उषा और रात्रि को भी एक ही कोटि माना गया। मरुतों, आदित्यों और दो अश्विनों की भी पृथक श्रेणी हुई। अतः देवताओं को पृथक पृथक वर्ग में रख दिया गया, जिससे उनकी संख्या कम हो गई। कभी कभी कुछ एक देवता एक दूसरे से संबंधित बताए गए। इंद्र का पिता द्यौस तथा भाई अग्नि मरुत उसका सहगामी था। उसने वृत्त से आप उषा और सूर्य को मुक्ति दिलाई थी, इसलिए वह स्वभावतः उन देवताओं से श्रेष्ठ और शक्तिशाली था। सूर्य अग्नि का रूप था तथा सोम की बहने या माताएं आप थीं। मरुतों का पिता सूर्य था। सूर्य की प्रिया उषा थी और बहन रात्रि थी। सूर्यपुत्री सूर्या का पति अश्वन था तथा अदिति के पुत्र आदित्य थे। इस प्रकार वैदिक समाज में देवताओं की विभिन्न श्रेणियां बन गईं, जिससे उनकी संख्या घटकर थोड़ी ही रह गई। कुछ देवताओं में श्रेष्ठता के लिए बराबर यत्न और प्रतिस्पर्धा होती रहती थी। कभी अग्नि को संपूर्ण सृष्टि का कर्ता माना गया, तो कभी सोम को। द्यावा पृथ्वी को भी संपूर्ण देवों और मनुष्यों का जनक माना गया। कालांतर में वरुण ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली, जिससे सूर्य, चंद्र और नक्षत्र सभी भय खाते थे। सरिताएं उसके आदेश से प्रवाहमान थीं तथा उसी की माया से जगत का निर्माण और संचालन होता था। उसके आवरण से सभी जीव आच्छादित थे, किंतु उसकी प्रभुता अधिक काल तक न रह सकी। इंद्र के उदय के साथ साथ वरुण का महत्व घटने लगा। अनार्यों से युद्ध करने के निमित्त अत्यधिक शक्तिशाली और कुशल नेता की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति इंद्र ने की। फलतः समाज में इंद्र की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा वह सभी देवताओं में विशिष्ट माना गया। परम तत्व की कल्पना व सत्य की अभिव्यंजना। देवताओं की श्रेष्ठता स्थापित करने के उपरांत आर्यों ने परम तत्व पर विचार विमर्श किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि इस जगत में कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, जो संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है और सबकी नियामक है। वह परम सत्ता के रूप में विद्यमान मानी गई। इसलिए चिंतन करते हुए यह कहा गया कि सत एक ही है, जिसे विद्वान, अग्नि, यम, मितारिस्वा आदि विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। यह सत परम सत्ता थी, जो हिरण्यगर्भ, प्रजापति और विश्वकर्मा के नाम से कई रूपों में विवृत की गई। इसने परम तत्व के रूप में एकेश्वरवाद की अभिव्यंजना की। इसके साथ ही सत तत्व की प्रतिष्ठा ने आर्यों के विशिष्ट दर्शन का प्रतिपादन किया। वस्तुतः सत तत्व एक ही था, जिसे विद्वानों ने अपनी विभिन्न शैलियों में व्यक्त किया। उस परम सत्य का साक्षात दर्शन करना अथवा समीप पहुंचना ही मनुष्य का लक्ष्य था। वैदिक जीवन दर्शन। देवयुगीन आर्यों का जीवन के प्रति निष्ठा, आस्था और अनुराग था। वे अपनी कर्मठता और एक निष्ठता के आधार पर समन्वय और अनुशासन का अनुकरण करते थे। वे संसार त्याग अथवा संसार से संन्यास लेने के लिए उद्यत नहीं थे। वस्तुतः वे प्रकृति मार्गी थे, निवृत्त मार्गी नहीं। ऋग वेद से विदित होता है कि विवाह के समय आर्य जीवन पर्यंत पत्नी, पुत्र, पौत्र आदि समृद्धता से संपन्न रहने की कामना करते थे। अपने 100 वर्षों के जीवन में वह सक्रियता, कर्मठता और सर्जकता से निष्ठित रहता था और अपने वैभव तथा सुख के लिए सोचता था। उस काल में न कभी नरक के विषय में सोचा जाता था, न मोक्ष के। जीवन के आनंद, सुख और वैभव के प्रति लोगों का आकर्षण था तथा वे विश्वासपूर्वक कार्यशील रहते थे। कल्याण और मंगल कामना सभी व्यक्तियों के जीवन का आदर्श था। पवित्रता, कर्मठता, निष्ठा और संतुलन का जीवन सभी व्यक्ति जीवन के रूप में सभी व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे तथा रित और सत्य को प्राप्त करना चाहते थे। पूजन का आधार बौद्धिक प्रधानता। आर्य अपने देवताओं का पूजन विभिन्न प्रकार से करते थे। उनकी पूजा पद्धति में जीवन के प्रति आस्था, निष्ठा और अनुराग होता था। जैसा ऊपर निर्दिष्ट किया गया है कि वे कल्याणमय जीवन के प्रति जागरूक थे तथा देवताओं से वे 100 वर्ष का जीवन, पुत्र, धन धान्य और विजय की कामना करते थे। वस्तुतः ऋग वैदिक आर्यों का जीवन के प्रति विराग नहीं था और न वे निवृत्त मार्गी ही थे। प्रवृत्ति मार्गी होने के कारण वे अपने देवताओं की उपासना में वृद्धावस्था तथा मंगलमय जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा व्यक्त करते थे। उस समय देवताओं से संबंधित मंदिर और मूर्ति पूजा का सर्वथा अभाव था। प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव और दर्शन करने के कारण आर्यों को मंदिरों और मूर्तियों जैसे प्रतीकों की अपेक्षा नहीं थी। इस प्रकार अंधविश्वास उनमें नहीं पनपा था। बुद्धिवादी और तर्क के आधार पर वे अंतस के देवताओं का स्मरण करते थे तथा आध्यात्मिक उपासना करते थे। इसलिए ब्रह्मा ने मनुष्यों को बुद्धिवादी ऋषि प्रदान किया जिससे वे वेद को समझ पाने में समर्थ हुए। यास्क ने निरुक्त में यह स्वीकार किया कि वेद के अर्थ को बुद्धि के माध्यम से समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है जिससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अर्थ की व्याख्या विभिन्न प्रकार से हुई। यज्ञिकों ने इसका अर्थ कर्मकांड की विधाओं के लिए से लिया। नैरुक्तों ने प्राकृतिक के व्यापारों से, आध्यात्मवादियों ने अद्वैतवाद से या एकत्व, और दुर्ग आचार्यों ने समन्वयवाद से। स्पष्ट है कि बौद्धिक प्रधानता के कारण वेद की व्याख्या विभिन्न प्रकार से हुई तथा उसकी शाखाओं और प्रशाखाओं का उन्नयन हुआ।
नमस्ते दोस्तों, मैं विवेकानंद। अब हम आते हैं एक दूसरे हेडलाइन पर। हेडलाइन है स्तुति अथवा प्रार्थना। देवताओं की पूजन प्रणाली में स्तुति अथवा प्रार्थना सबसे सरल, सुबोध और सुविधाजनक पद्धति थी। वेदों की ऋचाएं और सूक्त प्रायः स्तुतियां ही हैं जिनमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। स्तुति, सूक्ति, स्तवन, आशंसा आदि से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था तथा लौकिक सुखों की प्राप्ति की कामना की जाती थी। स्तुति की पद्धति सर्वथा सरल, सुबोध और निर्मल थी। प्रत्येक देवता के लिए स्तुति परक विभिन्न ऋचाएं थी जो उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्तवन के साथ उच्चारित की जाती थी। केवल इंद्र की स्तुति में ही करीब 250 ऋचाएं ऋग्वेद में है। तत्कालीन समाज में एक ऐसा वर्ग था जो स्तुति और स्तवन में ही विश्वास करता था तथा तद अनुसार अनुकरण करता था। वह घृत अथवा मधु की अपेक्षा स्तुति को अधिक महत्व देता था। दूसरी हेडलाइन है यज्ञ। वैदिक युग में यज्ञ की सर्वाधिक महत्ता थी जो व्यक्ति को पावन, पवित्र और कर्मठ बनाता था। यज्ञ की संपन्नता अग्नि से होती थी। अग्नि की प्रत्यक्ष शक्ति से वे परिचित थे, अतः वे अग्नि के उपासक थे। अग्नि के दो प्रकार थे। पहला स्मार्ताग्नि, जिससे प्रत्येक गृहस्थ अथवा विवाहित व्यक्ति गृहाणि में क्रियमाण यज्ञ संपन्न करता था। दूसरा स्रोताग्नि, जिसमें स्रोत यज्ञों की संयोजना की गई थी। इसके चार अवांतर थे: गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि और सभ्याग्नि। स्मार्त और स्रोत कर्मों की सम्मिलित संख्या 21 थी। 7 पाक यज्ञ, 7 हवीर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ। अग्न्याधान का अनुसरण करने वाला व्यक्ति ही इन यज्ञों को संपन्न कर सकता था। 25 वर्ष के ऊपर और 40 वर्ष से कम वय वाला सपत्तिक व्यक्ति ही अग्नि के आधार करने का अधिकारी था, अतः वही यज्ञ संपन्न कर सकता था। ऋग्वेद से स्पष्ट होता है कि विश्व की प्रक्रिया यज्ञ से संचालित होती है, जिसमें निरंतर 5 अग्नियां प्रज्वलित हैं और उसमें आहुतियां डाली जा रही हैं। सर्वाधिक बड़ी अग्नि द्यूलोक है, जिसमें श्रद्धा की आहुति पड़ रही है। चंद्रलोक का उद्भव इसी से हुआ है, जिसे पितृलोक भी कहते हैं। दूसरी अग्नि इंद्र है, जिसमें चंद्रमा आहुति है, इससे वर्षा होती है। तीसरी अग्नि पृथ्वी है, जिसमें वर्षा आहुति बनती है, अन्न की उत्पत्ति इसी से होती है। मनुष्य चौथी अग्नि है, जिसमें अन्न आहुति का काम करता है, इससे बीज उत्पन्न होता है। पांचवी अग्नि पत्नी है, जिसमें बीज आहुत रूप में पहुंचता है, जिससे संतान उत्पन्न होती है। यही सृष्टि का क्रम है, जो पंचाग्नि विद्या के अंतर्गत है। प्रकृति की क्रिया अश्वमेध के रूप में मानी गई है, तथा जीवन का क्रम सोम यज्ञ के रूप में। मनुष्य जीवन के प्रथम 24 वर्ष सोम का प्रातः सवन कहा गया है। तत्पश्चात 44 वर्ष मध्यांधिक सवन है और अंतिम 48 वर्ष तृतीय सवन। अतः जगत और जीवन दोनों यज्ञ हैं, जिसमें प्राण और भूत का अंतर मिलन है, तथा दोनों एक दूसरे में अंतर्भूत होकर एक दूसरे को आत्मसात करते हैं। ऐसी स्थिति में समस्त संसार यज्ञमय है। मंत्रों की सहायता से याज्ञिक कार्य किया जाता था, तथा समस्त यज्ञ कार्यों में मंत्रों का सन्निवेश अपेक्षित था। इसके साथ ही विभिन्न सामग्रियों की सहायता से हव्य भी प्रदान किए जाते थे। घी, दूध, धान्य अथवा मांस की आहुति दी जाती थी, तथा यह विश्वास किया जाता था कि अग्नि की ऊपर उठने वाली लंबी लंबी लपटें हव्य को देवताओं तक पहुंचा देती हैं। कभी कभी अपनी संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत रूप में भी यज्ञ किया जाता था। प्रायः ब्राह्मण पुरोहित ही यज्ञ संपन्न कराते थे, उनके बिना यज्ञों की संपन्नता असंभव थी। फलतः ब्राह्मणों का समाज में प्रभाव बढ़ता गया। ऋग्वेद का सोम यज्ञ अत्यंत विस्तृत और व्यापक यज्ञ था, जिसमें 3-3 वेदियां, 3-3 अग्नियों और बहुसंख्यक पुजारियों के साथ 4 प्रधान पुजारियों की अपेक्षा होती थी। यज्ञ की विविध सामग्रियों को इकट्ठा करने तथा पुरोहितों को दक्षिणा देने में अत्यधिक व्यय पड़ता था। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की यज्ञ राजन्य और माधवा वर्ग के लोग ही संपन्न कराते थे। ऋग्वेद के युग में ही यज्ञों की महत्ता बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। एक स्थल पर कहा गया है, हे अग्निदेव, जो मनुष्य तुम्हारा यज्ञ करता है वह स्वर्ग में चंद्र बन जाता है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ एक प्रधान साधन था। यज्ञ सृष्टि का मूल था, तथा देवता तक उससे शक्ति ग्रहण करते थे। कालांतर में राजन्य वर्ग ने साम्राज्य विस्तार के लिए यज्ञ संपन्न करना प्रारंभ किया, जिससे पुरोहित वर्ग का भी विकास हुआ। सम्राट, एकराट आदि बनने के लिए राजन्य वर्ग विशालकाय सोम यज्ञों का आयोजन किया करते थे। इस प्रकार के यज्ञ संपन्न करने के पीछे भौतिक और आर्थिक समृद्धि की प्रधान प्रेरणा थी, तथा यह समझा जाता था कि दैवी शक्ति की कृपा से व्यक्ति की समृद्धि होती है। उत्तर वैदिक युग तक कृषि और व्यापार के साथ साथ विविध शिल्पों का भी विकास हुआ, जिसके कारण देश सुसंपन्न और सुखी हुआ। वैश्य नामक एक वर्ग समाज के आर्थिक जीवन के उत्थान में लगा रहता था, अतः ऐसे यज्ञों में वैश्यों का भी सहयोग लिया जाने लगा। वस्तुतः वैश्यों की सहायता के बिना यज्ञ सफल नहीं हो पाते थे। यज्ञ संपादन में बलिदान, पितृ पूजा, उर्वरता प्रदायक अनुष्ठान, देवता से समीप्य स्थापना तथा पापों से मुक्ति आदि प्रमुख आधार तत्व थे। यज्ञों में इन तत्वों का होना अत्यंत स्वाभाविक था। मनुष्य के सभी कर्मों में याज्ञिक क्रिया ही श्रेष्ठ थी। ऋग्वेद की पुरुष सूक्त में उल्लिखित है कि यज्ञ से ही सृष्टि हुई थी। कालांतर में भी यह स्वीकार की गई, यज्ञ संपन्न करने से समस्त पाप धूल जाते थे। यही नहीं, यज्ञ के माध्यम से देवता वश में हो जाते थे, तथा भाते होकर वे मनुष्य को मनोनुकूल वर प्रदान करते थे। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो देवताओं और मनुष्यों के बीच संबंध स्थापना में यज्ञों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यज्ञ के माध्यम से देवताओं की उपासना करके उन्हें आमंत्रित किया जाता था और हविष अर्पित की जाती थी। उन्हें यथासंभव समादर प्रदान करके प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता था। इस प्रकार वैदिक युग में अनेकानेक यज्ञ प्रचलित हो गए थे। अग्निहोत्र, दर्श और पूर्णमास, चातुर्मास्य, आक्रण्य यण, निरूढ़, पशुबंध, सौत्रामणि, पिंड पितृयज्ञ, सोमायज्ञ, अग्निष्टोम, षोडशी, अतिरात्र, पुरुष मेघ, पंच महायज्ञ आदि तत्कालिक समाज में अत्यधिक अनुपालित किए जाते थे। इन यज्ञों के अतिरिक्त गवा मयन, वाजपेय, राजसूय और अत्यधिक अनुपालित किए जाते थे। इन यज्ञों के अतिरिक्त गवामयन, वाजपेय, राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञों का भी तात्कालिक समाज में बहुलतापूर्वक मान्यता थी। ऐसा विश्वास था कि मनुष्य द्वारा संपादित यज्ञ स्वयं फल उत्पन्न कर सकता है। अग्निहोत्र यज्ञ प्रातः और सायं अग्नि की उपासना के साथ संपन्न किया जाता था, जिसमें दूध, यवागु, तंडुल, दधि और घृत की आहुति दी जाती थी। पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाला यह सर्वोत्तम नाव के रूप में स्वीकार किया गया था। दर्श और पूर्णमास यज्ञ क्रमशः अमावस्या और पूर्णिमा को संपन्न किए जाते थे। दर्श यज्ञ में अग्नि और इंद्र प्रधान देवता थे तथा पूर्णमास में अग्नि और सोम। चातुर्मास यज्ञ चार चार मास में संपन्न किए जाते थे, जो पापों के क्षय के निमित्त किए जाते थे। निरूढ़ पशु बंध यज्ञ के अंतर्गत पशु का वध किया जाता था। सौत्रामणि यज्ञ हवेर यज्ञ के अंतर्गत था। पितृ यज्ञ में बलि प्रदान कर पितरों को संतुष्ट किया जाता था। सोम यज्ञ में सोमरस देवताओं को अर्पित किया जाता था। उसी से अग्नि में हवन भी किया जाता था। मूजवान नामक पर्वत के ऊपर उगने वाली सोमलता को पत्थरों से कूटकर वस्त्र के माध्यम से पवित्र द्रोण कलश में छान कर तथा गोदुग्ध मिलाकर विभिन्न देवताओं को अर्पित करने उद्देश्य से उसे अग्नि में प्रक्षिप्त करके यज्ञ के माध्यम से दिया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ 5 दिनों तक होता था। वस्तुतः सोम यज्ञ के अंतर्गत 7 प्रकार के अग्निष्टोम प्रकृति याग था। यज्ञ वो अग्नेय ऋग पर समागम से समाप्ति इस याग के नामकरण का कारण था। यह 5 दिनों में समाप्त होता था, जिसमें 12 शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। उक्ष्य, षोडशी और अतिरात्र को पूर्व याग से सम्मिलित कर ज्योतिष्टोम की संज्ञा दी गई थी। अत्यग्निष्टोम, आप्तोर्याम तथा वाजपेय भी पूर्वोक्त ज्योतिष्टोमों में आवापोदोष से निष्पन्न नवीन संस्थाएं थी। सोम का त्रिश्रवण होता था, जिसमें 3 बार प्रातः, मध्यान्ह और सायं उसका रस चुलाया जाता था। सोम यज्ञ में अत्यंत विकृत और गर्हित पुरुष मेध और पंच पशु यज्ञ था। पुरुष मेध के अंतर्गत मनुष्य की बलि दी जाती थी। पुरुष मेध 5 दिनों तक चलता रहता था। इसमें बलि का पुरुष उसी प्रकार प्रधान था जिस प्रकार अश्वमेध में यज्ञ का अश्व। इस यज्ञ को संपन्न करने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्ग के लोग होते थे। इसके निमित्त 1000 गायें और घोड़े देकर ब्राह्मण और क्षत्रिय को क्रय किया जाता था। क्रय से कोई व्यक्ति नहीं मिल पाता था तो किसी शत्रु को विजित कर इस यज्ञ में बलि दी जाती थी। वर्ष के पूर्ण होने पर इंद्र और पुषण को पशु बलि अर्पित कर प्रसन्न किया जाता था। पुरुष मेध में 11 अथवा 25 यूप बनते थे, जिनमें मेध्य पुरुषों को बांधा जाता था। तत्पश्चात उन पुरुषों का पर्याग्निकरण होता था। पर्याग्निकृत मनुष्य बंधन मुक्त कर दिए जाते थे और शेष अपर्याग्निकृत मनुष्यों की, जिनकी संख्या 11 होती थी, बलि दे दी जाती थी। पंच पशु यज्ञ में भेड़ा, बकरा, घोड़ा और सांड के अतिरिक्त एक मनुष्य भी पंच पशुओं में होता था। अग्नि चयन में चिति निर्माण के समय पंच पशुओं की बलि दी जाती थी। नर मेध में यह भी व्यवस्था थी कि युद्ध में मृत या विद्युत अथवा तीर से मरे व्यक्ति का शिर वेदी पर रखा जा सकता था। कुछ शास्त्रकारों ने इसका संकल्प हिरण्यमय या मृणमय कपाल निर्देशित किया, जो इस बात का प्रमाण है कि समाज में नर मेध का प्रचलन ग्राह्य नहीं था। पंच महायज्ञ प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक था। इसके निष्पन्न करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करता था। इसके अंतर्गत भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्मा यज्ञ सम्मिलित थे। देव यज्ञ में गृहस्थ सुबह और शाम भोजन तैयार हो जाने पर देवों को हवि प्रदान करता था। भूत यज्ञ के माध्यम से विभिन्न प्राणियों को संतुष्ट किया जाता था। पितृयज्ञ के अंतर्गत परलोकवासी पितरों को प्रसन्न करके सुख और समृद्धि की कामना की जाती थी। ब्रह्मा यज्ञ वेदाध्ययन और स्वाध्याय से सम्मिलित था। जिसमें व्यक्ति वेदांगों, इतिहास, पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त करता था। मनुष्य यज्ञ में ब्राह्मणों, अतिथियों और भिक्षुकों को भोजन कराया जाता था। राजसूय यज्ञ अभिषिक्त राजा द्वारा संपन्न किया जाता था। ब्राह्मण और वैश्य यह यज्ञ करने के अधिकारी नहीं थे। अश्वमेध यज्ञ यद्यपि सोम यज्ञ का ही प्रकार था, तथापि कालांतर में यह स्वतंत्र यज्ञ के रूप में राजाओं द्वारा संपन्न किए जाने लगा। सार्वभौम शासक ही इस यज्ञ को आयोजित कर सकता था। इसमें एक विशिष्ट प्रकार का अश्व, 100 अन्य अश्वों के साथ 400 रक्षियों के संरक्षण में विभिन्न दिशाओं के प्रांतों से निर्विघ्न वापस लौटाता था। तब उसके अंगों का अग्नि में हवन किया जाता था। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होता था।